मेरे अभिन्न मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने अपने मित्र सुभाष अग्रवाल के एक बहुत ही क्रांतिकारी साहसिक निर्णय के बारे में चर्चा की थी। जी हाँ, जानबूझकर मैं इसे केवल साहसिक निर्णय न कहके एक क्रांतिकारी साहसिक निर्णय कह रहा हूं। मैंने इसमें क्रांतिकारी शब्द क्यों जोड़ा, इसलिए जोड़ा है कि जब हम कोई भी एक ऐसा निर्णय लेते हैं जिसका समाज के द्वारा जबरदस्त रूप से विरोध किए जाने की पूरी पूरी आशंका रहती है, लेकिन हम निर्णय लेते हैं और एक बार जब निर्णय ले लेते हैं उसे लागू करते हैं, और जब हम लागू कर देते हैं तो इस बात की संभावना बनने लगती है कि शायद दूसरे लोग भी ऐसा करने लगें, और जब दूसरे लोग भी करने लगते हैं तो उससे समाज में एक परिवर्तन आता है, और एक जो सकारात्मक परिवर्तन आता है, सच पूछिए तो उसकी शुरुआत किसी न किसी के द्वारा लिए गए इसी प्रकार के साहसिक निर्णय के कारण होती है। याद होगा कि मैंने आप सबसे कल चर्चा की थी कि किस तरीके से मेरे मित्र सुभाष की जब पत्नी नहीं रही तो उस दौरान जो 13 दिन के जो कार्यक्रम होते हैं, उन्होंने फैसला किया कि गरुण पाठ न होकर के गीता का पाठ होगा। यह एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय था। अब मैं थोड़ी सी बात इस पर करने जा रहा हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो गरुण का पाठ होता है, यह माना जाता है कि मृत्यु के ये जो संस्कार चलते रहते हैं, इस दौरान यदि गरुण का पाठ कराया जाता है, जिसे लोग आकर के सुनते भी हैं, तो उससे जो मृत आत्मा है उसे शांति की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। कल्पना करके देखिए कि यदि आपने निर्णय लिया है कि नहीं, गरुण पाठ नहीं होगा, तो आप कौन सा निर्णय ले रहे हैं? आप, अगर हम सीधे शब्दों में बात कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जो मृत आत्मा है उसकी आत्मा को शांति न मिले, उन्हें मोक्ष प्राप्त न हो, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? सोच करके देखें कि अपनी पत्नी के बारे में कोई यह निर्णय ले रहा है। चलिए इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी आत्मा जिसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, जो अतृप्त है, उसे हम किस रूप में देखते हैं? बताइए, अतृप्त आत्मा को हम किस रूप में देखते हैं? इसका मतलब है कि वह जो अतृप्त आत्मा है वह नाराज होकर, रुष्ट होकर परिवार का कुछ भी अनिष्ट कर सकती है। वो ये सोच सकती है कि देखो, मेरी आत्मा की तृप्ति के लिए गरुण का पाठ नहीं कराया गया। सोचकर देखिए, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। सुभाष जिस परिवार में रहते हैं, जहां तक 4 भाई हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी 3 भाई एक ही मकान में रहते हैं। ये बात अलग है कि उनके जो रसोई घर है वो अलग अलग हैं, लेकिन रहते सब एक साथ ही हैं। तो जब सुभाष ने यह निर्णय लिया होगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुभाष इन 4 भाइयों में सबसे छोटा है, सबसे छोटा, इसे मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, और जब सुभाष ने यह निर्णय लिया होगा तो निश्चित तौर पर जो बड़े भाई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया होगा, और चलिए वे थोड़े से समर्थन में आ भी गए होंगे, तो जो ब्राह्मण वर्ग है, जो इससे जुड़ा हुआ वर्ग है, निश्चित रूप से उसका विरोध उभरा ही उभरा होगा, क्योंकि वे अभी तक गरुण पाठ ही करते आ रहे हैं। तो सामान्य तरीके से बहुत सहज रूप में वे गीता के पाठ की स्वीकृति कैसे दे सकते हैं? उनकी अपनी सीमाएं हैं, उन्हें तो ऐसा लगेगा कि जैसे धार्मिक परंपरा के खिलाफ वो कोई स्वीकृति दे रहे हैं, और पाठ भी उन्हीं को करना है। इसका मतलब है कि उनके लिए भी यह एक क्रांतिकारी निर्णय है कि वो गरुण का पाठ न सुनाकर गीता का पाठ सुनाएं, उनकी भी स्वीकृति जरूरी है। और इसका तीसरा पक्ष पूरा का पूरा बाहरी समाज है। चलिए, आपने परिवार को कन्विंस कर लिया, ब्राह्मण को कन्विंस कर लिया, लेकिन इसके बाहर का भी समाज है। गरुण पाठ जब होता है तो बाहर के लोग भी कुछ सुनने के लिए आ जाते हैं, आपको उन्हें भी कन्विंस करना है। और चलिए, अगर आप उन्हें कन्विंस नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनकी नाराजगी मोल ले रहे हैं, और पता नहीं इस नाराजगी की आगे चलकर क्या कीमत चुकानी पड़े, हम नहीं जानते। दोस्तों, अब आपको क्या लग रहा है कि यह जो निर्णय लिया गया क्या सामान्य सा निर्णय है? और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक मान्यता है भगवत गीता के बारे में, बचपन में एक इस तरह की घटना मेरे साथ घटित हुई थी कि जब कोई व्यक्ति मृत स्थिति में आ जाता है या बस मृत होने ही वाला है तो ये कहा जाता है कि अगर उसके कान में गीता के स्वर पड़ जाएं, गीता के शब्द पड़ जाएं, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवित में सुनाया जाता है और यहां सुनाया जा रहा है मृत आत्मा को। हालांकि ये बहुत ही प्रचलित मान्यता नहीं है, लेकिन कहीं कुछ समुदायों में ये मान्यता है। अब वहां आप गीता सुना रहे हैं, तो दोस्तों जब आप इस संदर्भ में इस निर्णय के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सच में यह बहुत ही एक क्रांतिकारी साहस भरा निर्णय था। सामान्य साहस की बात नहीं थी, सामाजिक परिवर्तन की एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत थी, बशर्ते कि आगे यह परंपरा बढ़ सके। तो दोस्तों समाज में तो इसी तरह से परिवर्तन होते हैं, इसके लिए किसी न किसी को पहला कदम उठाना ही पड़ता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि सुभाष अग्रवाल इसके लिए, खासकर मेरी ओर से, मेरी पत्नी प्रीति की ओर से, मेरे परिवार की ओर से और आप सब मेरे प्रिय श्रोताओं की ओर से भी और एकेडमी की मेरी पूरी टीम की ओर से भी कहीं न कहीं अभिनंदन के पात्र जरूर हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबसे दो दिनों के लिए इजाजत चाहता हूं। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, बातें होंगी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।